श्रोताओं नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। साझा मंच मोबाइल वाणी से मैं इसमत अली आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ। मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत गमगीन है। फ्रंट लाइन वर्कर शायद आपने पहली बार सुना होगा कि हम फ्रंट लाइन वर्कर पुलिस को ना बताकर, डॉक्टर को ना बताकर किसी और को बता रहे हैं। तो ये भी अभी आप आगे खबरों में जानेंगे। मेरे साथ अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ ऑटो सेल के दिल्ली NCR अध्यक्ष मेहरमान अली सिद्दीकी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए समय निकाला मेहरबान जी। जैसे कि हमने कहा फ्रंट लाइन वर्कर पुलिस के अलावा, डॉक्टरों के अलावा और भी हैं, तो हमारे श्रोता को बताइए हम फ्रंट लाइन वर्कर किन्हें कह रहे हैं?
आप TSR ड्राइवर ऑटो वाले को कह रहे हैं?
तो हमने बताया आपको कि ऑटो वाले और TSR वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो कि मजदूर को, मरीजों को उनके अस्पताल तक लेके जाते हैं और उनको सुविधाओं की पास पहुंचाते हैं। अच्छा, अभी जो जैसे कोरोना चल रहा है, ऑटो वालों की भी आमदनी बहुत कम हुई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो अभी ऑटो वालों का मेन खास मुद्दा क्या है? क्योंकि कई लोगों की किस्तें भी नहीं पहुंच पाई हैं।
ऐसा है, पहला कोरोना काल आया था जब भी यही हुआ था, हम लोगों ने, हमारी NGO ने जगह जगह पोस्टर भी चिपकवाए थे, इस चीज़ को लेकर सरकार से अपील करी थी कि जितने ये ऑटो वाले हैं इनको जो है, जैसे फाइनेंसर से 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए जमा करके लेके आते हैं, उसके बाद जैसे इनकी 1-2 किस्त टूट जाती है तो फाइनेंसर क्या है ना, अपने अंदर जकड़ लेता है। ऑटो की वैसे जो रियल कीमत है वो 2 लाख रुपए है, लेकिन आज ऑटो की ब्लैक मार्केटिंग में जो कीमत है वो 6 से 6.5 लाख रुपए चल रही है आज की रेट में जो चल रही है। और जितने चाहे उतने ऑटो, जितने चाहे उतने खरीद लो आप, लेकिन इस पर समस्या जो असली है वो ये है, एक तो ये जो कबाड़ा है पुरानी गाड़ी को जमा करके गाड़ी लेके आते हैं, इसमें समस्या है। 3 लाख रुपए की तो पुरानी गाड़ी है, लेकिन जब हम इसे कंपनी में जमा कराते हैं वापसी कबाड़े के रूप में, तो इसके 5,000 रुपये, 6,000 रुपये मिलते हैं, तो बाकी के जो 3 लाख रुपये, 2,95,000 रुपये वो तो वहीं ख़त्म हो गए बीच में ही। तो वो जो नई गाड़ी आती है वो सारा भार आके उस पर गिर जाता है, वो 3 लाख रुपये भी उस पर जोड़ दिए जाते हैं और जो 2 लाख रुपये की है वो जोड़ दिए जाते हैं। फिर फाइनेंसर अपने पैसे लेता है, वो जब पैसे लगाता है तो अपना बेनिफिट जोड़ता है, तो वो 6 से 6.5 लाख रुपये पर गाड़ी पहुँच जाती है। फिर आप 2 से 2.5 लाख रुपये जमा करके जब आप गाड़ी लेके आते हो, उसकी 20-22,000 रुपये, 25,000 रुपये किस्त होती है, काम है नहीं, ड्राइवर देगा कहाँ से, मालिक देगा कहाँ से, वो रात दिन अपनी फुल कोशिश करने के बावजूद नहीं दे पाता, जहाँ 1-2 किस्त टूटी नहीं फाइनेंसर अपने पास गाड़ी खड़ी कर लेता है। इससे क्या है, उसके वो 2-2.5 लाख रुपए भी मारे जाते हैं और जो उसकी रोज की मजदूरी है वो भी मारी जाती है, वो बेरोजगार हो जाता है। तो ये समस्या इसलिए है, एक तो ये ई रिक्शा और ये तुम्हारे TSR ऑटो ड्राइवर, इनके लिए ज़्यादा समस्या है ये। वजह कि कोई भी आदमी एक हद तक गाड़ी चला रहा है, वो नहीं चला पाता तो कई बार वो अपनी तजुर्बे से, अपनी नॉलेज से किसी भी काम में हर आदमी बढ़ोतरी करता है, लेकिन ऑटो में क्या समस्या है कि आप एक ही ऑटो चलवा सकते हो या एक ही ऑटो मतलब चला सकते हो, लेकिन इसमें पहले के नियम कुछ और थे, अब के नियम कुछ और है। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, अरविंद सिंह लवली उस टाइम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मंत्री थे दिल्ली में, और ये परिवहन विभाग और फाइनेंसर, इनकी तीनों की गुट्टी मिलके इन्होंने इस तरीके से, फाइनेंसर ये जो परिवहन विभाग ने ये ऑटो और ई रिक्शा का परमिट इस तरीके से इशू कर रखा है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट आदेश कुछ और देता है, लेकिन ये आदेश को दूसरे तरीके से घुमा के इम्प्लीमेंट कर रखा है इन्होंने, ये है मेरा कहना।
अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी था कि क्योंकि ऑटो की जो वास्तविक कीमत है बहुत ज़्यादा मार्केट में वसूली जा रही है, आपका ये कहना है, तो क्या जो लोग कहते हैं कि मीटर से ऑटो वाले नहीं चल रहे हैं या मीटर से दुगना किराया मांगते हैं, तो क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि उनको ऑटो बहुत महंगा पड़ रहा है?
हाँ, तो आप खुद ही देख लो इस चीज़ को, एक चीज़ 6-6.5 लाख रुपए की है और मार्केट में उसकी कीमत 2 लाख रुपए दिखा रखी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो पिछली गाड़ी के 3 लाख रुपए है वो भी तो उसी पे लगे ना, 2 लाख रुपए की नई गाड़ी होगी, 3 लाख रुपए की पुरानी होगी, तो 5 लाख रुपए तो वैसे ही चली गई है मार्केट में कीमत।
अच्छा, क्या आपको लगता है जब सरकार इनको कंट्रोल रेट पर चलाती है तो ड्राइवर के लिए पेंशन की योजना या रिटायरमेंट की स्कीम भी कोई होनी चाहिए, तो उसका क्या प्रारूप आपके संस्था के पास है?
नहीं नहीं, इन्होंने क्या है, एक ड्राइवरों को एक बहुत बड़ा झूठा ये आश्वासन दे रखा है कि आपको ऑटो जो है फ्री मिल रहा है, कोई ऑटो फ्री नहीं मिल रहा है। फ्री का मतलब होता है जैसे कि यूपी में अखिलेश सरकार है, उसने रिक्शा दिए थे फ्री, लाइसेंस भी बनवाए थे, तो वो सारा काम प्रोसीजर से हुआ था। लेकिन यहाँ दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। ऑटो की कीमत दे के मैंने भी जैसे कि अभी बताया, पुराना ऑटो जमा करोगे 3 लाख रुपए वो खत्म हो गए आपके, 2 लाख रुपए का नया ऑटो लेगा 5 लाख रुपए वैसे हो गए, 10-20-50-60 हजार रुपए फाइनेंसर जोड़ता है, फिर उसका ब्याज जोड़ता है, वो जाके 6.5-7 लाख रुपए पे गाड़ी पड़ती है। तो यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा है, बल्कि ड्राइवर का शोषण हो रहा है यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से।
अच्छा, दिल्ली सरकार बड़ी हितैषी मानी जाती है ऑटो ड्राइवर वालों की, टैक्सी वालों की, इनकी, तो सरकार के लिए आपसे मतलब आप क्या उम्मीद सरकार से करते हैं और क्या मांग करते हैं?
सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, सरकार तो खाली ढकोसले देती है। 5-5 हजार रुपए जैसे सरकार ने दिए, अभी 2 बार में 5-5 हजार रुपए दिए लाइसेंस बैज वालों को। चलान कितने के हुए उनके, 30-30 हजार के, 50-50 हजार के। जिस गाड़ी की कीमत ही तुमने 2 लाख रुपए दिखा रखी है, उस पर 50 हजार रुपए का साल में अगर 5 साल में भी दो बार भी चलान हो गया तो वो तो चली गई उसकी कीमत तो वहीं। तो मतलब एक चीज है तुम्हारे पास 2 लाख रुपए की, जैसे कि आपके रेट में, मेरे हिसाब से तो वो 6 लाख रुपए की है, आपके हिसाब से वो चीज 2 लाख रुपए की, आप उस पर 50 हजार का चलान किस हिसाब से भर रहे हो? अत्याचार हुआ ना ये बिल्कुल एकदम सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, ये सब अत्याचार ही तो है। आप आरडीआई डाल के पता करो कि इसमें चलान कितने हुए हैं। 30 हजार 50 हजार मायने रखता है, वो मजिस्ट्रेट भी सोचता नहीं है कि गरीब आदमी लाएगा कहाँ से, लेकिन अगर वो नहीं लाएगा तो ऑटो फाइनेंसर बैठा हुआ डकैत छीनने के लिए उससे ऑटो। इस तरह से बहुत सारे इसी तरह से बर्बाद हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं है।
सरकार से आप क्या मांग करते हैं?
सरकार से तो हम यही मांग करते हैं कि एक तो ये पुरानी गाड़ियाँ बंद हो कबाड़ा, जब उम्र खत्म हो जाती है तो उसको जमा करने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। दूसरा कि एक अपनी हैसियत के हिसाब से ऑटो वाला या ई रिक्शा वाला अपनी हैसियत के हिसाब से अपने रिक्शा या ऑटो बढ़ा सके, इसके परमिट खुलने चाहिए। यही हमारी मांग है सरकार से भी, कोर्ट से भी, डिपार्टमेंट से भी।
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे राजधानी दिल्ली से अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ के ऑटो सेल अध्यक्ष मेहरमान अली सिद्दीकी जी को। आप भी अगर ऑटो चालक है या ऑटो चालकों के बारे में कोई अपने विचार सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9211-53555 पर मिस कॉल लगाएं, लैंडलाइन नंबर से कॉल बैक आएगी, नंबर 3 दबाएं और अपने विचार जरूर साझा करें। आप गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल वाणी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।